एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में आप कह सकते हैं लाखों लोगों की सोच और उनके जीने के तरीके को बदला है।
हाँ, सही कहा। हम बात कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी की जानी मानी किताब अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें, अंग्रेजी में कहें तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो जैसे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में एक तरह से बदलाव लाने का पूरा नक्शा है।
और कमाल की बात ये है कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। मतलब आज की दुनिया में इतनी तेज रफ्तार, इतना तनाव, कई बार लोग दिशाहीन महसूस करते हैं ना।
बिल्कुल।
तो सवाल उठता है कि क्या कुछ ऐसे स्थायी सिद्धांत हैं जो हमें वाकई प्रभावी, असरदार और संतुष्ट बना सकते हैं।
हाँ, और ये किताब इसी का जवाब देने की कोशिश करती है। ये ऊपर ऊपर के टिप्स नहीं देती बल्कि ज्यादा गहराई में जाती है।
ये अंदरूनी बदलाव की बात करती है जिसे कोवी चरित्र नीति कहते हैं, मतलब कैरेक्टर एथिक, ना कि सिर्फ बाहरी चमक दमक या व्यक्तित्व नीति के।
सही, तो चलिए थोड़ा लेखक के बारे में जानते हैं। स्टीफन कोवी कौन थे?
हाँ, स्टीफन आर कोवी, जिनका जीवनकाल 1932 से 2012 तक रहा, वो एक बहुत ही सम्मानित नेतृत्व गुरु, शिक्षक और सलाहकार थे। हार्वर्ड से MBA किया, BYU से डॉक्टरेट, और वो मशहूर फ्रैंकलिन कोवी कंपनी के सह संस्थापक भी थे। लेकिन उनकी असली खासियत कुछ और थी।
उनकी खासियत थी उनका गहरा शोध। उन्होंने अमेरिका के करीब 200 साल से भी ज्यादा के सफलता साहित्य का अध्ययन किया, मतलब सक्सेस लिटरेचर का। और उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात नोट की कि कैसे समय के साथ सफलता का मतलब चरित्र से हट गया। पहले ईमानदारी, साहस, सत्यनिष्ठा जैसे गुणों पर जोर था।
अच्छा।
हाँ, और फिर धीरे धीरे ये फोकस व्यक्तित्व पर आ गया, मतलब छवि कैसी है, तकनीकें क्या हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं।
ओ, तो चरित्र नीति से व्यक्तित्व नीति की तरफ एक बदलाव।
बिल्कुल। और इसी शोध ने उन्हें यह आत्मविश्वास दिया कि सच्ची टिकाऊ प्रभावशीलता जो है वो बाहरी दिखावे से नहीं आती, वो आती है अंदरूनी सिद्धांतों और चरित्र से।
तो इस किताब का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ 7 आदतों की एक लिस्ट तो नहीं होगी, जाहिर है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 7 आदतें तो हैं, पर ये एक पूरे दर्शन का हिस्सा हैं, एक समग्र नजरिया है ये। कोवी का जो मुख्य तर्क है वो है अंदर से बाहर का दृष्टिकोण, मतलब इनसाइड आउट अप्रोच।
अंदर से बाहर, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि अगर दुनिया को बदलना है या दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी, अपने चरित्र से, अपने इरादों से और अपने नजरिए से।
नजरिया यानी पैराडाइम, वो चश्मा जिससे हम दुनिया को देखते हैं।
हाँ, बिल्कुल। कोवी कहते हैं कि ये हमारे मानसिक नक्शे हैं, और अगर हमारा नक्शा ही गलत है तो हम सही जगह कैसे पहुंचेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें।
बात तो सही है।
तो पहला कदम है अपने नजरिए को समझना और फिर उसे सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ मिलाना। सिद्धांत जैसे निष्पक्षता, ईमानदारी, मानवीय गरिमा। कोवी कहते हैं ये सिद्धांत लाइट हाउस की तरह हैं, अटल। हम उन्हें बदल नहीं सकते, हम सिर्फ खुद को उनके मुताबिक ढाल सकते हैं।
और इसी सफर के लिए कोवी ने एक और जरूरी कॉन्सेप्ट दिया है, परिपक्वता सात्यत्य यानी मैच्योरिटी कंटिन्यूम।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकास की एक यात्रा है। पहला स्तर है निर्भरता, डिपेंडेंस। यहाँ फोकस आप पर होता है, आप मेरा ख्याल रखें, आप जिम्मेदार हैं, ये बचपन वाली स्थिति है।
ओके।
फिर आता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। यहाँ फोकस मैं पर है, मैं कर सकता हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ये एक बड़ी उपलब्धि है।
हाँ, समाज में इसे बहुत महत्व दिया जाता है।
बिल्कुल। लेकिन कोवी कहते हैं कि सबसे ऊंचा स्तर है परस्पर निर्भरता,
इंटरडिपेंडेंस।
परस्पर निर्भरता मतलब दूसरों पर निर्भर होना।
नहीं, निर्भरता नहीं, ये है हम का नजरिया, हम मिलकर ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता से भी आगे की बात है। आजादी जरूरी है, पर सच्ची महानता सहयोग में है, टीम वर्क में।
अच्छा, तो ये 3 स्तर हैं और 7 आदतें इसी यात्रा में मदद करती हैं।
एग्जैक्टली। पहली 3 आदतें हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। ये हमारी निजी जीत है।
प्राइवेट विक्ट्री।
और अगली तीन आदतें हमें स्वतंत्रता से परस्पर निर्भरता की ओर ले जाती हैं। ये सार्वजनिक जीत है,
पब्लिक विक्ट्री।
और सातवीं आदत इन सबको बनाए रखने के लिए है।
दिलचस्प। तो चलिए इन आदतों की यात्रा शुरू करते हैं, निजी जीत से। पहली आदत क्या है?
निजी जीत की नींव है आदत वन, प्रोएक्टिव बने।
बी प्रोएक्टिव।
ये सबसे बुनियादी और शायद सबसे शक्तिशाली आदत है। इसका सीधा सा मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना।
जिम्मेदारी लेना, हाँ। ये मानना कि किसी भी घटना, किसी भी उत्तेजना, स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह है, और उस जगह में हमारे पास चुनने की शक्ति है।
चुनने की शक्ति,
हाँ। हम सिर्फ परिस्थितियों के या अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। हम अपने चुनाव के उत्पाद हैं, न कि हालात के।
तो ये रिएक्टिव होने के ठीक उलट है। जैसे रिएक्टिव लोग तो बस हालात या दूसरों के व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं।
बिल्कुल। प्रोएक्टिव व्यक्ति सोच समझकर अपने मूल्यों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया चुनता है।
इसमें वो प्रभाव का क्षेत्र और चिंता का क्षेत्र वाली बात भी आती है ना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न।
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वे सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं, यानी अपने प्रभाव के क्षेत्र पर। वे उन चीजों की सिर्फ चिंता करने में वक्त बर्बाद नहीं करते जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, यानी चिंता कर क्षेत्र। और जब वो प्रभाव के क्षेत्र पर काम करते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता भी है।
ये हमें पीड़ित महसूस करने से बचाता है, हम कर्ता बन जाते हैं।
सही कहा। जब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए?
दिशा तय करना।
हाँ, यहीं पर आती है आदत दो, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें।
बिगिन विद द एंड इन माइंड।
ये आदत है विजन की, उद्देश्य की। कोवी कहते हैं कि हर चीज दो बार बनती है।
दो बार कैसे?
पहले हमारे दिमाग में, यानी मानसिक रचना, मेंटल क्रिएशन, और फिर हकीकत में, यानी भौतिक रचना, फिजिकल क्रिएशन। जैसे कोई घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है।
अच्छा।
तो अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी मंजिल क्या है, हमारे जीवन का नक्शा क्या है, तो हम सही दिशा में कैसे बढ़ेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम शुरुआत करने से पहले ये सोचें कि हम पहुंचना कहां जाते हैं।
इसके लिए कोवी ने वो अंतिम संस्कार वाली कल्पना करने को कहा है, है ना? वो थोड़ा गहरा सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, वो एक शक्तिशाली अभ्यास है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन के अंत में किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे, हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है, कौन से मूल्य, कौन सी विरासत।
और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए है व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट।
बिल्कुल। ये एक तरह से हमारे जीवन का संविधान है। इसमें हम लिखते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, हमारे मूल सिद्धांत क्या हैं, और बहुत जरूरी बात, ये हमारी अलग अलग भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। जैसे मैं एक पिता हूँ, एक पति हूँ, एक दोस्त हूँ, एक पेशावर हूँ, एक सीखने वाला हूँ, वगैरह।
हाँ, भूमिकाएं।
और फिर हर भूमिका से जुड़े हमारे लक्ष्य क्या हैं। ये मिशन स्टेटमेंट हमें रोजमर्रा के फैसलों में रास्ता दिखाता है। ये पक्का करता है कि हम जो कर रहे हैं वो सच में हमारे लिए जरूरी है या नहीं,
ताकि हम जिस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं वो सही दीवार पर टिकी हो।
वाह। जब दिशा साफ हो गई, अपनी भूमिकाएं और लक्ष्य तय हो गए, तब बात आती है उसे अमल में लाने की, आदत थ्री।
हाँ, आदत थ्री। पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये आदत दो का एक्शन प्लान है, उसका भौतिक रूप।
ये है व्यक्तिगत प्रबंधन, मतलब अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीना। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है।
अपनी इच्छा शक्ति को अपने मूल्यों के अधीन रखना, मुश्किल है पर जरूरी।
यहीं पर वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आता है, कामों को दो पैमानों पर देखना, जरूरी और महत्वपूर्ण।
हाँ, वो चार क्वाड्रेंट्स।
पहला क्वाड्रेंट है जरूरी और महत्वपूर्ण, जैसे कोई संकट आ गया, कोई डेडलाइन है, यहाँ तुरंत ध्यान देना पड़ता है।
दूसरा क्वाड्रेंट गैर जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण, ये है असली प्रभावशीलता का क्षेत्र। इसमें क्या आता है?
इसमें आता है निवारण, प्रिवेंशन, योजना बनाना, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना, व्यायाम करना, आराम करना, और सबसे अहम, अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों पर काम करना, जो हमने आदत टू में तय किए थे।
अच्छा, ये वो काम है जो जरूरी नहीं लगते इसलिए टलते जाते हैं।
बिल्कुल। तीसरा क्वाड्रेंट है जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण, जैसे कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, दूसरों की तात्कालिक मांगें जो हमारे लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं, ये हमें बहुत व्यस्त रखते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं बनाते।
और चौथा तो बस।
हाँ, गैर जरूरी और गैर महत्वपूर्ण, समय की बर्बादी।
तो प्रभावी लोग कहाँ ज्यादा समय बिताते हैं?
क्वाड्रेंट 2 में वे जरूरी कामों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि महत्वपूर्ण कामों के लिए प्रोएक्टिवली समय निकालते हैं। वे अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर हफ्ते की योजना बनाते हैं। इसमें अनुशासन लगता है, भावनाओं को मूल्यों के अधीन रखना पड़ता है।
तो ये हुई निजी जीत, जिम्मेदारी लेना आदत 1, दिशा तय करना अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों के साथ आदत 2, और फिर प्राथमिकता से काम करना।
हाँ, ये मजबूत नींव है। इसके बिना सार्वजनिक जीत यानी दूसरों के साथ प्रभावी रिश्ते बनाना मुश्किल है।
और रिश्तों की दुनिया में जाने से पहले कोवी एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, भावनात्मक बैंक खाता, इमोशनल बैंक अकाउंट। ये क्या चीज है?
ये एक बहुत अच्छा रूपक है। ये दिखाता है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास का स्तर कितना है। जैसे बैंक खाते में पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं,
वैसे ही रिश्तों में विश्वास जमा या निकाला जाता है।
हाँ, जब हम वादे निभाते हैं, किसी को ध्यान से सुनते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, माफी मांगते हैं, दया दिखाते हैं, तो हम उस रिश्ते के भावनात्मक बैंक खाते में विश्वास जमा कर रहे होते हैं।
और जब वादे तोड़ते हैं, अनादर करते हैं, सुनते नहीं, अपनी बात थोपते हैं,
तो हम निकासी कर रहे होते हैं, और अगर निकासी ज्यादा हो जाए तो रिश्ता टूट जाता है। सार्वजनिक जीत के लिए इन खातों में अच्छा बैलेंस रखना जरूरी है।
बिल्कुल सही। तो अब आते हैं सार्वजनिक जीत की आदतों पर। आदत 4।
आदत 4, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये मानवीय संबंधों का एक दर्शन है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी के साथ बातचीत करें, कोई समझौता करें, तो हमेशा ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करें जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो, सब जीतें।
ये उस आम सोच से अलग है जहां लगता है कि अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हें हारना पड़ेगा, विन लूज, या मैं हार जाऊं ताकि तुम खुश रहो, लूज विन।
हाँ, या दोनों ही हार जाएं, लूज लूज। विन विन के लिए साहस भी चाहिए अपनी बात रखने का, और दूसरे की परवाह भी चाहिए उसकी जरूरतों को समझने का। ये संतुलन जरूरी है,
और इसके पीछे वो प्रचुरता की मानसिकता वाली बात है, अबंडेंस मेंटालिटी।
बिल्कुल, ये विश्वास कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, सफलता, खुशी, संसाधन, ये सीमित नहीं है। अगर आपको कुछ मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए कम हो गया।
और इसकी उल्टी है कमी की मानसिकता, स्केर्सिटी मेंटालिटी, कि सब कुछ सीमित है इसलिए हमें छीनना पड़ेगा, होड़ करनी पड़ेगी।
सही, विन विन मानसिकता सहयोग के दरवाजे खोलती है।
और सहयोग के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें। यहीं पर आदत 5 आती है, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत शक्तिशाली है।
हाँ, आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। ये प्रभावी कम्युनिकेशन का शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
मतलब अपनी बात कहने, अपनी सलाह देने या अपना समाधान बताने से पहले रुकें।
हाँ, रुकें, और सामने वाले व्यक्ति को सच में गहराई से, उसके नजरिए से समझने की कोशिश करें।
इसके लिए कोवी सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी एम्पथेटिक लिसनिंग पर बहुत जोर देते हैं।
बिल्कुल, सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि भावनाओं को महसूस करना, अर्थ को समझना। इस इरादे से सुनना कि आप समझना चाहते हैं, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए तैयार होना चाहते हैं।
अक्सर हम सुनते ही सोचने लगते हैं कि हम क्या बोलेंगे, या फिर हम तुरंत सलाह देने लगते हैं, या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, या जज करने लगते हैं।
हाँ, ये आम आत्मचरित्रात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जिनसे बचना चाहिए। जब सामने वाले को ये महसूस होता है कि उसे वाकई समझा गया है, उसका सम्मान किया गया है, तभी वो आपकी बात सुनने और समझने को तैयार होता है। ये भावनात्मक बैंक खाते में बहुत बड़ी जमा पूंजी है।
समझने और आपसी लाभ की इस नींव पर ही अगली आदत टिकी है, आदत 6।
आदत 6, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। ये है रचनात्मक सहयोग की आदत। इसका सिद्धांत है कि संपूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा होता है, मतलब 1+1=3 या उससे भी ज्यादा।
ये कैसे होता है?
जब लोग एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करते हैं, उन्हें समझते हैं, आदत 5, और विन विन समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, आदत 4, तो वे मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले संभव नहीं था।
तो ये मतभेदों को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर मानता है।
हाँ, अलग अलग नजरिए, अनुभव और ताकतें जब मिलती हैं तो नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। इसे कोवी थर्ड अल्टरनेटिव खोजना कहते हैं, जो मेरे या आपके तरीके से बेहतर हो। ये इनोवेशन और टीम वर्क का सार है।
तो ये हुई 6 आदतें, 3 निजी जीत की, 3 सार्वजनिक जीत की। लेकिन इन सबको बनाए कैसे रखा जाए, यहां आती है आदत 7।
बिल्कुल, आदत 7, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। यह है आत्म नवीनीकरण, सेल्फ रिन्यूअल की आदत। ये कहती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं, और हमें इस संपत्ति को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से समय निकालना चाहिए।
वो लकड़हारे वाली कहानी की तरह जो पेड़ काटने में इतना व्यस्त था कि उसके पास आरी तेज करने का वक्त ही नहीं था।
वही कहानी, अगर हम लगातार काम करते रहेंगे और खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी प्रभावशीलता कम हो जाएगी, इसलिए रुककर आरी तेज करना जरूरी है।
और ये नवीनीकरण किन क्षेत्रों में करना चाहिए?
कोविड 4 प्रमुख आयाम बताते हैं। पहला, शारीरिक, फिजिकल, व्यायाम, सही खान पान, पर्याप्त आराम, तनाव प्रबंधन। दूसरा, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, अपने मूल्यों को स्पष्ट करना और उनसे जुड़ना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, प्रकृति में समय बिताना, कला का आनंद लेना, जो भी आपको शांति और प्रेरणा दे।
तीसरा,
मानसिक, मेंटल, अपने दिमाग को तेज रखना, पढ़ना, लिखना, सीखना, योजना बनाना, नई चीजें सोचना। और चौथा, सामाजिक भावनात्मक, सोशल इमोशनल, दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाना, सेवा करना, सहानुभूति दिखाना, तालमेल बिठाना। ये आदत 4, 5 और 6 से बहुत गहराई से जुड़ा है।
और इन चारों में संतुलन जरूरी है।
हाँ, संतुलन बहुत जरूरी है। ये आदत साथ बाकी सभी आदतों को संभव बनाती है और हमें लगातार विकास के एक ऊपर की ओर स्पाइरल पर ले जाती है।
ये उस PPC संतुलन वाली बात से भी जुड़ता है ना, उत्पादन प्रोडक्शन यानी परिणाम, और उत्पादन क्षमता प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी हम खुद या हमारे संसाधन।
बिल्कुल, अगर हम सिर्फ P पर फोकस करेंगे और PC को नजरअंदाज करेंगे, जैसे सेहत, रिश्ते, सीखना, तो लंबे समय में P भी घट जाएगा, आरी कुंद हो जाएगी।
तो ये सातों आदतें वाकई एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कोई लिस्ट नहीं है जिसे टिक करते जाए।
नहीं, ये एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। ये सिर्फ कुछ करने की बात नहीं है, ये खास तरह का इंसान होने की बात है।
तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान है, उस स्थान में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास और हमारी स्वतंत्रता निहित है। कितनी गहरी बात है, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं है।
बिल्कुल, और ये मुझे हमेशा याद रहती है आदत 3 के लिए। मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को मुख्य बात बनाए रखें। कितना सरल पर कितना मुश्किल, अपनी प्राथमिकताओं पर, अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों पर टिके रहना।
और संवाद के लिए ये वाली, अधिकांश लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं।
ये तो रोज अनुभव होता है।
आदत 5 का सार,
और ये जो पूरी यात्रा को समेट देती है। एक विचार बोएं, एक क्रिया काटें, एक क्रिया बोएं, एक आदत काटें, एक आदत बोएं, एक चरित्र काटें, एक चरित्र बोएं, एक भाग्य काटें। अंदर से बाहर का पूरा दर्शन इसमें आ गया।
अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अमल कैसे करें?
देखिए, शुरुआत छोटे कदमों से करनी होगी। व्यक्तिगत स्तर पर आदत 2 के लिए शायद अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने की कोशिश कर सकते हैं। पहले ड्राफ्ट में ही परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस अपनी अहम भूमिकाएं, जैसे परिवार में, काम पर, समाज में, खुद के लिए, और उनसे जुड़े कुछ लक्ष्य सोचें।
और आदत 3 के लिए?
आदत 3 के लिए हर हफ्ते थोड़ा समय निकालें, शायद रविवार शाम को, अगले हफ्ते की योजना बनाने के लिए। और जानबूझकर क्वाड्रेंट 2 गतिविधियों के लिए समय ब्लॉक करें। व्यायाम, कुछ नया सीखना, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, अपने मिशन स्टेटमेंट से जुड़े लक्ष्यों पर काम करना।
और आदत 7, आरी तेज करना?
उसके लिए भी रोज या हफ्ते में थोड़ा समय निकालें, चारों आयामों के लिए कुछ ना कुछ। शायद 15 मिनट व्यायाम, 15 मिनट पढ़ना, 10 मिनट शांत बैठना, किसी दोस्त को फोन करना, छोटे छोटे कदम।
और प्रोफेशनल लाइफ में?
वहां आदत 5, सहानुभूतिपूर्ण सुनना बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मीटिंग्स में, टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में, पहले सच में समझने की कोशिश करें।
आदत 4 का विन विन नजरिया अपनाना नेगोशिएशन में, टीम के लक्ष्यों को तय करने में मददगार हो सकता है।
और आदत 6, सिनर्जी, टीम में जब अलग अलग मत हों तो उन्हें दबाने के बजाय उनसे कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश करना।
रिश्तों में भी ये लागू होती है।
बिल्कुल, भावनात्मक बैंक खाते का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों से विश्वास बनाना, वादा निभाना, तारीफ करना, सुनना, और जब असहमति हो तो आदत 5 का इस्तेमाल करना, पहले दूसरे की बात, उसका नजरिया समझने की पूरी कोशिश करना, फिर अपनी बात रखना। इससे झगड़े कम होते हैं और समझ बढ़ती है।
तो आपके लिए इस पूरी किताब और हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सबक या निष्कर्ष क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सच्ची और टिकाऊ प्रभावशीलता जो है वो चरित्र और सिद्धांतों से आती है, शॉर्टकट या सिर्फ तकनीकों से नहीं।
ये अंदर से बाहर की यात्रा है, धीमी हो सकती है पर स्थायी होती है। और वो परिपक्वता सातत्य का विचार भी बहुत शक्तिशाली है कि असली उन्नति अकेले दौड़ने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर सहयोग से चलने में है, परस्पर निर्भरता में। आज की दुनिया में ये याद रखना बहुत जरूरी है।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो है भूमिका और लक्ष्य, रोल्स एंड गोल्स की स्पष्टता का महत्व। आदत 2 और 3 के जरिए जब हम अपनी अलग अलग भूमिकाओं को पहचानते हैं, काम पर, घर पर, समाज में, और उनसे जुड़े लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो जीवन ज्यादा संतुलित और उद्देश्यपूर्ण महसूस होता है। ये सिर्फ काम निपटाना नहीं रह जाता बल्कि सही काम, महत्वपूर्ण काम निपटाना बन जाता है।
बिल्कुल। और ये याद रखना कि ये आदतें अलग अलग नहीं है, ये एक सिस्टम की तरह काम करती हैं, एक दूसरे को मजबूत करती हैं। और आदत 7 यानी खुद को लगातार नवीनीकृत करना, इन सबको ऊर्जा देता है। ये सच में जीवन जीने का एक तरीका है।
श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल सोचने लायक हो सकता है, इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत या सिद्धांत उन्हें अपने जीवन की किसी खास भूमिका या लक्ष्य के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है और क्यों?
या ये भी सोच सकते हैं कि अगर स्टीफन कोवी आज की इस डिजिटल, हमेशा कनेक्टेड दुनिया के लिए कोई 8वीं आदत जोड़ते तो वो क्या हो सकती थी। दिलचस्प सवाल है ये। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।